एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियाँ। एक गीत 100 अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।
एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। नमस्कार, कबूल करें संज्ञा का। फिल्म और गैर फिल्मी संगीत की रचना प्रक्रिया और उनके विभिन्न पहलुओं से संबंधित रोचक प्रसंगों, दिलचस्प किस्सों और यादगार घटनाओं को समेटने वाला स्तंभ है रेडियो प्लेबैक इंडिया का ये साप्ताहिक स्तंभ एक गीत 100 अफसाने। आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1966 की फिल्म सूरज का गीत, तितली उड़ी उड़ जो चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे मैं चली आकाश। शारदा की आवाज, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत। कैसे नई गायिका शारदा को मौका मिला अपने पहले गीत के रूप में किसी बड़ी फिल्म में ऐसे हिट गीत को गाने का, तितली फूल और आकाश के जरिए गीतकार शैलेंद्र किस दर्शन को समझाना चाहते थे, जानिए इस गीत की रिकॉर्डिंग से जुड़ी तमाम बातें स्वयं शारदा के शब्दों में। इस गीत ने फिल्म फेयर में कौन सा नया नियम लागू करवाया, ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का और आज इसकी प्रस्तुति कर रही हैं शुभ्रा ठाकुर।
पार्श्व गायिका शारदा जी के निधन से फिल्म संगीत के सुनहरे दौर के आकाश का एक और सुरीला सितारा अस्त हो गया। यूं तो शारदा जी 1965 से लेकर 1986 तक फिल्म संगीत जगत में सक्रिय रहीं, लेकिन उनके मशहूर गीतों का दौर 1965 से 1971 तक रहा, जिस दौरान उनके गाए कई गीत शोहरत के शिखर पर पहुंचे और उन्हीं गीतों की वजह से सुनने वालों ने उन्हें याद रखा और आज भी उन गिने चुने हिट गीतों को लोग बड़े चाव से सुनते हैं। अब शारदा जी नहीं रहीं, लेकिन उनके बाद भी उनके गाए उन दिलकश गीतों का सदाबहार दौर यूं ही जारी रहेगा। उनके गाए उन हिट गीतों में से हमने चुना है फिल्म सूरज का एक गीत, जिसकी विस्तृत समीक्षा हम आज के संक में करने जा रहे हैं। फिल्म सूरज 1966 में प्रदर्शित हुई थी। यह फिल्म दक्षिण के निर्माता टी गोविंद राजन और एस कृष्णमूर्ति द्वारा निर्मित फिल्म थी और इसका निर्देशन भी दक्षिण के ही निर्देशक टी प्रकाश राव ने किया था। राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला अभिनीत इस फिल्म में संगीत दिया शंकर जयकिशन ने, गीत लिखे शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने। दोस्तों, ये वो दौर था जब रॉयल्टी इश्यू से उत्पन्न मनमुटाव की वजह से लता जी और रफी साहब साथ में नहीं गा रहे थे, इसलिए इस फिल्म के तीन युगल गीतों के लिए रफी साहब के साथ आशा भोसले और सुमन कल्याणपुर की आवाजें ली गई। इन तीन गीतों के अलावा फिल्म में चार एकल गीत भी थे, जिनमें से दो पुरुष कंठ में और दो महिला कंठ में रिकॉर्ड होने वाले थे। पुरुष एकल गीतों के लिए तो रफी साहब थे ही, लेकिन फीमेल सोलोस के लिए न तो लता जी की आवाज ली गई, न आशा जी की और न ही सुमन जी की। आवाज ली गई एक नई आवाज, जिसका नाम था शारदा राजन अयंगार, जो शारदा के नाम से प्रसिद्ध हुई। कैसे मिला नई गायिका शारदा को इस फिल्म में दो दो गीत गाने का मौका? हुआ यूं कि तमिलनाडु के कुंभकोणम में जन्मी शारदा 12 वर्ष की आयु में अपने पिता की नौकरी के स्थानांतरण की वजह से तेहरान चली गई थी। बचपन से संगीत का शौक, गले में सुर और घर पर धार्मिक वातावरण होने की वजह से वो संगीतमय वातावरण में बड़ी होने लगी थी और हिंदी फिल्मी गीतों से अत्यधिक लगाव के कारण वो भी एक दिन प्लेबैक सिंगर बनना चाहती थी। यही सपना आंखों में लिए उन्हें भारत छोड़ तेहरान जाकर बसना पड़ा, पर कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तेहरान में शारदा जी जलसों में और बड़ी पार्टियों में गाया करती थीं। एक बार उन्हें एक ऐसी ही पार्टी में गाने का मौका मिला जो शोमैन राज कपूर साहब के ऑनर में आयोजित की गई थी। शारदा जी की अनोखी और बिल्कुल अलग हटकर आवाज की तरफ राज साहब भी आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके और उन्होंने शारदा जी को ये सलाह दी कि मुंबई आकर फिल्म संगीत में अपनी किस्मत आजमाएं। वर्ष 1959 में 21 वर्षीय शारदा पहुंच गईं मुंबई। कपूर परिवार के सदस्यों के सामने उन्होंने गाने गाए। सभी को उनकी आवाज बहुत पसंद आई। राज कपूर ने उन्हें शंकर जयकिशन के पास भेज दिया आगे की फॉर्मेलिटीज के लिए, इस वादे के साथ कि वो शारदा को अपनी फिल्म में गाने जरूर गवाएंगे। इस तरह से शंकर जयकिशन से मिलने के बाद शारदा जी की विधिवत संगीत शिक्षा आरंभ हुई। पंडित जगन्नाथ प्रसाद, पंडित लक्ष्मण प्रसाद और विदुषी निर्मला देवी से उन्होंने संगीत की तालीम ली। उनकी तालीम 1964 की राज कपूर की फिल्म संगम के बनने तक पूरी नहीं हुई थी, इसलिए उनसे उस फिल्म में कोई गीत गवाया ना जा सका। इसके बाद राज कपूर अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर प्लान करने लगे, लेकिन वह 1970 में बनकर पूरी होनी थी। उधर शंकर जयकिशन में से शंकर जी को शारदा की आवाज बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने मेरा नाम जोकर की प्रतीक्षा किए बगैर उनसे अपनी अगली दो फिल्मों गुमनाम और सूरज में गीत गवाने का फैसला कर लिया। हालांकि गुमनाम पहले रिलीज हुई थी, पर शारदा जी का गाया पहला गाना फिल्म सूरज का तितली उड़ी ये गीत था। फिल्म के निर्माता और निर्देशक दक्षिण भारत से होने की वजह से शारदा जी के गीत गाने से उन्हें कोई आपत्ति भी नहीं हुई, बल्कि उन्हें खुशी हुई। और इस प्रकार फिल्म सूरज में शारदा जी की आवाज में दो गीत रिकॉर्ड हुए, तितली उड़ी उड़ी जो चली और देखो मेरा दिल मचल गया। आज केवल पहले गीत की बातें। विविध भारती से प्रसारित उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में वर्ष 2009 में शारदा जी से एक लंबा साक्षात्कार लिया गया था, जिसमें उन्होंने तितली उड़ी गीत से संबंधित बहुत सारी बातें बताई थी और उन्हीं को हम आज यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। शारदा जी के शब्दों में, इस गीत को जनरेशन सॉन्ग भी बोल सकते हैं, इसे लोग आज भी पसंद करते हैं। जब भी मैं प्रोग्राम्स में जाती हूँ तो लोग कहते हैं मेरी बच्ची ने इस गाने पे डांस किया स्कूल में, किसी ने मुझसे पूरा लिरिक्स मंगवाया कि मेरी बच्ची को चाहिए। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि इतने सिंपल गीत को इतनी कामयाबी मिली। ना तो इसमें कोई रोमांटिक सीन था ना कोई डांस, बस एक घोड़ा गाड़ी में जा रही है राजकुमारी और वो गा रही है। पता नहीं इस गाने में ऐसा क्या है जो अब तक लोगों को आकर्षित कर रहा है। आगे शारदा जी ने बताया कि उन्होंने इस गीत को लेकर काफी शोध किया था और अचानक उन्हें एक ऐसा एहसास हुआ कि उनके लिए इस गाने का अर्थ ही बदल गया। शारदा जी ने आखिर ढूंढ ही लिया कि शैलेंद्र जी के लिखे इस गीत में कौन सा दर्शन छुपा हुआ है, क्योंकि शैलेंद्र जी अपने हर गीत में कोई न कोई गहरी बात बड़ी आसानी से कह जाते थे। इस गीत के साथ भी ऐसा ही था, जिसकी खोज शारदा जी ने कर ही ली। बात कुछ ऐसी है कि आत्मा एक पक्षी या तितली की तरह है, आत्मा अपने उच्च की ओर जाना चाहता है, यानी वह मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसके रास्ते के बाधक हैं इस संसार की तमाम मोहमाया। आत्मा रूपी तितली अपने उच्च यानी आकाश में विलीन होना चाहती है, लेकिन धरती की तमाम माया रूपी रंग बिरंगे फूल उस तितली को अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं, उसे जमीन पर खींचना चाहते हैं। तितली उड़ी उड़ जो चली फूल कहा आजा मेरे पास, तितली कहे मैं चली आकाश। इस तरह से इस गीत के दो पक्ष बनते हैं। एक पक्ष है इसका शाब्दिक पक्ष, जिसके जरिए राजकुमारी अपने आप को तितली कहती हुई अपना भाव बढ़ा रही है, और इसका दूसरा पक्ष आध्यात्मिक है, जिसमें आत्मा मोक्ष और माया की बातें हैं। अब आते हैं इस गीत की रिकॉर्डिंग से जुड़ी यादों पर। शारदा जी बताती हैं कि इस गाने की रिकॉर्डिंग मुंबई के फेमस स्टूडियोज में हुई थी। 100 से 150 साजिंदे बैठे हुए थे, उनमें वॉयलिन ही कुछ 50-60 होंगे। वॉयलिन में भी 2-3 विभाग थे, एक मेलोडी का, एक काउंटर पार्ट और एक काउंटर पार्ट ओब्लिगातो। वॉयलिंस के साथ चेलो डबल बेस होता था, फिर उसके बाद मेन सेक्शन और रिदम सेक्शन। कुछ 15-20 साजिंदे रिदम सेक्शन में बैठे थे और रिदम कंट्रोलर अलग होता था। म्यूजिक के लिए अलग म्यूजिक असिस्टेंट और सिंगर के लिए अलग। सिंगर को बहुत ख्याल रखना पड़ता था कि कोई भी गलती ना हो। बहुत सारे लोग भी आते थे, प्रेस आती थी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर आते थे, कभी कभी स्टार्स भी आते थे, गीतकार आते थे। तितली उड़ी की रिकॉर्डिंग पर राजेंद्र कुमार और तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आए हुए थे। आखिर सबको पसंद आनी चाहिए। जब शारदा जी से ये पूछा गया कि फिर तो रिकॉर्डिंग का माहौल स्टेज शो जैसा बन पड़ा होगा, इस पर उन्होंने कहा कि स्टेज शो में जब आप लाइव गा रहे होते हैं तब सब कुछ एक्सेप्ट हो जाता है, रिकॉर्डिंग में नहीं होता। इधर साउंड रिकॉर्डिस्ट आकर कहेंगे कि सांस सुनाई दे रही है, उसे कंट्रोल कीजिए। फिर गीतकार कहेंगे ये शब्द सही नहीं आया। संगीतकार आकर कहेंगे कि इधर सुर का ध्यान रखो। फिर डायरेक्टर कहेंगे कि यहाँ एक्सप्रेशन सही नहीं लग रहा। इस तरह से कितनी ही बातों का ध्यान रखना पड़ता था। इस बात पर जब शारदा जी से ये पूछा गया कि तितली उड़ी के समय उन्हें कितनी घबराहट हुई थी, उन्होंने बताया कि रिकॉर्डिंग कैसे हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। इसका सारा क्रेडिट शंकर जयकिशन को देते हुए उन्होंने कहा कि शंकर जी जयकिशन जी दोनों थे तो दोनों मुझे उठाकर आसमान में लेकर गए। ऐसा लग रहा था कि मैं पंछी की तरह हवा में उड़ रही हूँ। शारदा जी को इस बात का अनुमान भी नहीं था कि ये गीत कामयाबी की इतनी बुलंदियां पार कर जाएगा, लेकिन शंकर जी को इसका आभास था कि गाना हिट होगा। जब शारदा जी ने उनसे पूछा कि उन्हें कैसे मालूम, तो शंकर जी का जवाब था, हम लोगों ने झक नहीं मारा इतने सालों तक इंडस्ट्री में, हम लोग बोल के गाना हिट करवा के दिखा देते हैं। इस गीत की बारीकियों के बारे में शारदा जी ने कहा कि तितली शब्द तो एक खास तरीके से उन्होंने गाया, तितली के बजाय उन्होंने तितली गाया। ये सब छोटी छोटी बातें गाने को एक अलग मुकाम तक लेकर जाती हैं। इस गीत को बेशुमार मोहब्बत श्रोताओं की मिली और आज भी मिल रही है। उस साल बिनाका गीतमाला के वार्षिक कार्यक्रम में 21वें पायदान पर ये गीत रहा और इसे फिल्म का रफी साहब का गाया हुआ गाना बहारों फूल बरसाओ सरताज गीत यानी चोटी का गीत बना। फिल्म फेयर पुरस्कारों में उन दिनों मेल फीमेल प्लेबैक सिंगर्स के लिए केवल एक कॉमन पुरस्कार हुआ करता था। अब हुआ यूं कि बहारों फूल बरसाओ और तितली उड़ी को समान संख्या में वोट्स मिले। फिल्म फेयर वाले तो दुविधा में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। तय हुआ कि बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड रफी साहब को दिया जाए और शारदा जी को एक स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया जाए। और इस तरह से फिल्म फेयर पुरस्कारों में अगले साल से मेल और फीमेल प्लेबैक के लिए दो अलग पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई। फिर इसके बाद 1969 से लेकर 1972 तक लगातार शारदा जी के गाए गीतों के नॉमिनेशंस फिल्म फेयर अवार्ड्स में हुए और 1971 में उन्हें जहां प्यार मिले फिल्म के गीत बात जरा है आपस की इसके लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ। दौड़ में शामिल थे लता जी के गाए दो रास्ते फिल्म का बिंदिया चमकेगी और जॉनी मेरा नाम फिल्म का ओ बाबुल प्यारे। इसी के साथ लता जी ने यह घोषणा कर दी कि वे अब आगे से फिल्म फेयर पुरस्कार स्वीकार नहीं करेंगी। तो दोस्तों यहां आकर पूरी होती है तितली उड़ी की कहानी। शारदा जी के गाए गिने चुने गाने यूं ही हमें गुदगुदाते रहेंगे। उनकी खनकती और अनोखी आवाज और अंदाज का जादू यूं ही दशकों तक बरकरार रहेगा। अब आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
तो दोस्तों यहां आकर पूरी होती है तितली उड़ी की कहानी। शारदा जी के गाए गिने चुने गाने यूं ही हमें गुदगुदाते रहेंगे। उनकी खनकती और अनोखी आवाज और अंदाज का जादू यूं ही दशकों तक बरकरार रहेगा। अब आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
एक गीत सौ अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।